ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस् तद्धामं वृंदावनम् रम्यद काजिद उपासना ब्रजवधुवर्गे नया कल्पिता। श्रीमत भागवत पुराण अमलम प्रेमापुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतम तत्रादरो न परः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का श्री राधिका रमन मंदिर में सभी राधिका रमन भक्तों की तरफ से स्वागत है। सभी सुबह की भागवत कक्षा में आए हुए और हम सभी यहाँ पर प्रभुपाद जी के द्वारा दिया हुआ कार्यक्रम कर रहे हैं और शुद्ध भक्तों के मार्गदर्शन में निर्देशानुसार भजन करने से निश्चित ही कृष्ण प्रेम की प्राप्ति और आनंद की प्राप्ति होती है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये भजन का हम सोच रहे हैं इसी में, क्योंकि ये शरणागति का भजन है तो इसका अर्थ भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले श्लोक हम लोग पढ़ लेते हैं। श्रीमद् भागवत स्कंध 8 अध्याय 3 और अध्याय का नाम है गजेंद्र की समर्पण स्तुति और श्लोक नंबर 28 है। नमो नमस्तुभ्यम असह्य वेग शक्ति त्रयाय अखिल धी गुणाय प्रपन्न पालाय दुरंत शक्तये कतदिन्द्रियाणां अनवाप्य वर्तमने सद्दा। नमः नमस्कार करता हूँ। नमः पुनः नमस्कार करता हूँ। तुभ्यम तुमको असह्य दुस्तर वेग वेग प्रवाह शक्ति त्रयाय तीन शक्तियों वाले परम पुरुष को अखिल ब्रह्मांड का धी बुद्धि के लिए गुणाय इंद्रिय विषयों के रूप में प्रकट होने वाले प्रपन्न पालाय शरणागतों को शरण देने वाले ब्रह्म को दुरंत शक्तये दुर्जय शक्ति वाले कृत इंद्रियाणाम उन व्यक्तियों द्वारा जो इंद्रिय संयम करने में अक्षम हैं, अनवाप्य दुर्लभ वर्तमाने पथ पर। अनुवाद इस प्रकार से है, आप लोग दोहराएंगे पीछे से। हे प्रभु, आप तीन प्रकार की शक्तियों के दुस्तर वेग के नियामक हैं, आप समस्त इंद्रिय सुख के आगार हैं और शरणागत जीवों के रक्षक हैं। आप असीम शक्ति के स्वामी हैं, किंतु जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में रखने में अक्षम हैं, वे आप तक नहीं पहुंच पाते। मैं आपको बारंबार सादर नमस्कार करता हूं। तात्पर्य है जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। आसक्ति, लोभ तथा काम, ये तीन दुस्तर वेग हैं जो भगवान के चरण कमलों पर मन को एकाग्र करने में बाधक होते हैं। ये वेग इसलिए कार्यशील रहते हैं क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि अभक्तों तथा नास्तिकों को उनका साक्षात्कार हो, किंतु भगवान के चरण कमलों की शरण लेने पर ये अवरोध हट जाते हैं और भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। अतएव भगवान शरणागतों के रक्षक हैं। भगवान के चरण कमलों की शरण में गए बिना कोई भी व्यक्ति भक्त नहीं बन सकता। तब भगवान भीतर से बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह भगवत धाम वापस जा सकता है। तो भगवान कहते हैं कि मम माया दुरत्यया, देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, कि जो मेरी ये जो देवी शक्ति है, तीन प्रकार की यहां पर प्रभुपाद जी शक्तियों के दुस्तर वेग के नियामक, यानी कि उसको बनाने वाले उसके कंट्रोलर भी हैं और हम सब कंट्रोल्ड हैं, हम सब उनके द्वारा नियंत्रित हैं। और ये तीनों शक्तियां का विस्तार से वर्णन है। भगवान की आध्यात्मिक शक्ति अहलादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी उसकी अध्यक्षा हैं, लीडर हैं, और उसमें भगवान अपने परम आध्यात्मिक जगत में और उन्हीं शक्ति के द्वारा इस भौतिक जगत में भी अपने भौम वृंदावन, अपने जो प्राकट्य जो लीलाएं करते हैं, प्रकट लीला अप्रकट लीला, तो भगवान अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा करते हैं। कौन समझेगा जब तक भगवान की ही कृपा ना होए, भगवान के द्वारा बनाई हुई माया को कौन पार कर सकता है। मम माया दुरत्यया, ये तीन गुणों वाली ये जो माया है ये किसने बना रखी है, ये मैंने बना रखी है। महामाया ठगनी मैं जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोलती बोलती मधुर वाणी। तो प्रत्येक व्यक्ति तीन गुणों में हिचकोले खा रहा है, इसलिए कभी कभी बोल दिया जाता है कि सब कुछ तो गुण ही कर रहे हैं, गुण तो कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारा दोष क्या है, हम भगवान को भूलते हैं, हम भूलना चाहते हैं, भूलते हैं बाद में, पहले चाहते हैं। राधिका रमन श्री कृष्ण बलराम श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की शिल प्रभुपात की जाए। तो हम भूलना चाहते हैं इसीलिए फिर भगवान उसमें हमको मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं, तब इच्छा मत माया रचे कारागार, आपकी इच्छा से ही माया कारागार रचती है। तब इच्छा मत शिव करे न संहार, आपकी इच्छा से ही शिव जी संहार करते हैं। और आपकी इच्छा से ही तब इच्छा मत ब्रह्मा करे न सृजन, तो आपकी इच्छा से ही सुख दुख सब कुछ, सब संगठन जो कुछ भी होता है वो भगवत इच्छा से होता है। तो अब किसी का प्रश्न होगा कि फिर हमने क्या किया प्रभु जी, हमारी क्या, कि हमारा क्या रोल हुआ। जैसे एक सुंदर घटना है, हमारा भी रोल रहता है, हम अपनी स्वतंत्रता का जब दुरुपयोग करते हैं उसके बाद ही हमको जो है पकड़ा जाता है। जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि भगवान की मर्जी से पत्ता भी नहीं हिलता है, इसलिए हम कैसे हिल पाएंगे, है कि नहीं। अक्सर मेरे को घटना हमेशा याद आती है, जब हम एक दफे चांदनी चौक में, एक लाला जी रहते हैं वहां अक्सर दुकानदार, वो हमारे मेंबर भी थे, हम लोग वहां गए तो उनसे पूछे कभी कभी मंदिर आया करो, तो बोलते हैं स्वामी जी जब भगवान बुलाएंगे तब आएंगे ना। तो अब बात कितनी अच्छी लगती है, जो बैठे होंगे उनको भी बड़ा अच्छा लगेगा कि देखो कितने अच्छे भक्त हैं, जब भगवान बुलाएंगे, ठीक ही कहा। तो छूटते ही माइंड में आया कि हमने कहा अब कृष्ण आपको डायरेक्ट टेलीफोन घुमाएंगे कि मैं कृष्ण बोल रहा हूं, लाला जी मेरी इच्छा हो गई है, अब आप आ ही जाइए मंदिर में, तब आओगे। मैंने कहा अगर हमें भेजा है, किसी भक्त को, साधु को भी भेजा है वहां पर, तो इसको भी तो कृष्ण की इच्छा मान लेना चाहिए, हम इतने बड़े कहां से भक्त आए। तो जब उनको लगा कि थोड़ा सा पराजित जैसे हो रहे हैं तो थोड़ा वो सनक में आए और बोलते हैं स्वामी जी भगवान जो है उनकी मर्जी से पत्ता भी नहीं हिलता, इसकी मैं कैसे हिल सकता हूं, मतलब मैं लाला है, मैं इतना सेठ कैसे हिल सकता हूं, कहने का भाव ये था। तो फिर उत्तर उनको दिए कि मैंने कहा सेठ जी आपका घर कहाँ है, बोलते हैं रोहिणी में है। अच्छा जी, दुकान, बोले यहां है। मैंने कहा रोहिणी से दुकान तक डेली कैसे हिलते हैं आप। ऐसे ही भगवान के लिए भी हिल के मंदिर आ जाइए, ऑफिस तक तो आते ना अपने कमाई करके। फिर तो वो अपने असली रूप में आए, बोलते हैं ये माला से कुछ होने वाला नहीं है, आप क्या सोच रहे हैं हम भक्त नहीं हैं। फिर असली रूप में आए, आप क्या सोच रहे हैं भक्त नहीं हैं, ऐसा माला फिरत जुग भया, फिरा ने मन का फिर, फिर कबीर जी का एक दुआ ठोक दिया। मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि हमें साधुओं से कृपा की आशा नहीं है, न हमको कृपा, कृपा तो बहुत दूर की बात है कि कम से कम सुनी लें कुछ, वो भी नहीं, बल्कि मैं जो यहां पर बैठा हुआ हूं यही वास्तव में सिद्धि है। कहां आप ये क्या, मतलब चिमटा पकड़ के बैठ गए, माला वाला पकड़ करके कुछ इधर आते, हमारी तरह खटते, है कि नहीं। तो इतना अज्ञानता में जो है घुसे रहते हैं। तो भगवान जो है, एक दूसरा उदाहरण भी है बड़ा सरल और सौम्य, जैसे अक्सर लोग कहते हैं हमने क्या किया फिर सब भगवान ने किया, ऐसा नहीं है। जैसे कभी कभी लोग बोलते हैं हम भी भगवान के हुए, सब कुछ उन्हीं ने तो किया, फिर जेल में भी वही डालते हैं, सब कुछ हमने क्या किया। तो इसका उदाहरण है, जैसे आप रेड लाइट में, कभी भी भारत सरकार आपको ये नहीं बोलती कि रेड लाइट तोड़ो और हम आपको फिर जेल डालेंगे, कभी कहती है, जबरदस्ती करती है, नहीं जेल आप तोड़ो रेड लाइट को, लाल बत्ती को तोड़ो, बल्कि बोल रखा है कि लाल बत्ती इसीलिए है सब अपने अपने घर तक सही समय समय पर सही से पहुंच पाए तरीके से, वहां पर रुकना है, नहीं रुकोगे और उसको तोड़ोगे तब आपको पुलिस पकड़ती है। मतलब आपने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, सरकार ने आपको बलपूर्वक दुरुपयोग नहीं करवाया। ठीक है, सरकार लाइट सरकार की है, आगे पुलिस भी सरकार की ही है, रोड भी सरकार के ही है, नियम भी सरकार के ही है, जेल भी सरकार की है, हम भी सरकार के हैं, समझने की बात है। लेकिन मूल बात क्या है, आपने अपनी स्वतंत्रता का लाल बत्ती जो तोड़ी आपने, वो सरकार ने जबरदस्ती नहीं कराया था आपसे। जब आप तोड़ते हो आपके पास तो इतना दम भी नहीं कि आप जेल जा सको, फिर आपको जेल ले जाया जाता है। हम सोना चाहते हैं, हम सो सकते हैं, तब इच्छा मत किछु करीते ना पारे, आपकी इच्छा के बिना हम सोना भी चाहते हैं, हमने इच्छा करी तब भगवान सुलाते हैं हमको, मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। तो भक्त इस ढंग से उसको सही ढंग से समझते हैं, ये प्रभुपाद जी ने इस ढंग से क्लियर किया है हम लोगों को। नहीं तो आदमी बोलता है इसमें फिर सारा चीज कर भगवान रहे हैं, लेकिन हमें जो स्वतंत्रता दे रखी है उसका सदुपयोग और दुरुपयोग करने के लिए भगवान कभी भी नहीं, भगवान ने पूर्ण ज्ञान दिया उसके बाद कहते हैं यथा इच्छसि तथा कुरु। इसको कहते हैं प्रेम, कितना प्रेम करते हैं। सारा ज्ञान दिया अर्जुन को और उसके बाद बोले हे अर्जुन अब तुम्हारी जो इच्छा है वो करो। तो अर्जुन को क्या करना चाहिए, अर्जुन बोलता है नष्ट मोहम स्मृति लब्धवा, मेरा मोह नष्ट हो गया है, स्मृति आ चुकी है, करिष्ये वचनम तव, हे कृष्ण अब आप जैसा कहेंगे, अब मुझे अब भरमाइये नहीं, भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी मायया, अब भरमाइये नहीं, मेरी माया के द्वारा ही ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान तो सबके हृदय प्रदेश में बैठे हुए हैं, लेकिन उसकी इच्छा के अनुसार हृदय में हमारी किस प्रकार की इच्छा है, वो इनसाइड स्टोरी क्या है, इनसाइड में हमारा क्या चल रहा है। वो अक्सर एक उदाहरण है और समझने के लिए, एक दफे एक भक्त जो है घर में गए किसी के, तो उन्होंने पूछा आप पानी पियोगे, जूस पियोगे, दूध पियोगे, क्या पियोगे, तो वो कहते हैं पानी दे दीजिएगा, वो पानी लाके दे दिए। अब वही भक्त समझ लीजिए द्वारका जाए भगवान के पास में और भगवान भी पूछेंगे क्या चाहिए, दूध चाहिए, जूस चाहिए, केसर वाला दूध चाहिए, क्या चाहिए, तो पानी दे दीजिए प्रभु। तो भगवान अंदर से केसर वाला मलाई पिस्ते वाला दूध ला रहे हैं। ऐसा क्यों, भगवान को अंदर का पता है कि वो अंदर दूध सोच रहा था, बाहर से फॉर्मेलिटी में पानी ही दे देना, समझ रहे नहीं। हम बाहर से क्या कहते हैं वो बहुत बड़ी चीज नहीं है, अंदर क्या सोच रहे हैं भगवान वो देंगे, और वो तो इतने नजदीक है हमारे, ही वेरी नियरेस्ट एंड वेरी डियरेस्ट, उनसे ज्यादा पास में कौन होगा, भगवान से ज्यादा हमारे पास में, इतने पास में बैठे हुए हैं। कठोपनिषद में श्लोक भी है ना कि किस प्रकार से एक एक पक्षी जो है फल खा रहा है, खट्टे मीठे सुख दुख के सबके, और दूसरा देख रहा है व्हाट इज गोइंग, कभी अच्छे फल खाता है तो क्या होता है, हा खूब तालियां बजाता है, दुख के फल खाता है हो फिर हाय हाय, तो उधर से दूसरा पक्षी देख रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, सारी रील घूम रही है सब ए टू जेड, अनेक जन्मों की रील। तो बहु जन्मे करे नहीं, बहु योनि भ्रमीनाथ लईनु शरण, निज गुण कृपा करे अधम तारण। बहुत योनियों में मैंने क्या किया, इस संसार में भ्रमण किया मैंने, कभी कुत्ते के परिवार में गया, कभी भैंस के परिवार में गया, कभी कभी लोग बोलते हैं प्रभु जी 10 साल हो गए माला ठीक नहीं हो रही, 20 साल, आप अपने 20 सालों को गिन रहे हो, अनगिनत जो जन्म हमने लगाए हैं, कभी हम राजा के परिवार में, कभी इस परिवार में, उस परिवार में, कितने परिवारों में हमने जन्म लिया और उनके संस्कार पड़े हुए हमारे अंदर, और अभी भी इस जीवन में भी कोई 40 साल के बाद भक्त बनता है, कोई 30 साल के बाद, कोई 20 साल, कोई 10 साल, कोई 50 साल के बाद, और उसमें भी वो 10-15 साल में भजन थोड़ी किया होता है, वो तो बड़ी मुश्किल से जद्दोजहद करते हुए माला होती है, कभी आ गए, कभी नहीं आए, कभी ले लिया, कभी नियम पालन हुआ, कभी ये तो दवाई खा रहे नहीं खा रहे यही स्थिति चल रही है, और तो 30 साल क्या गिनाएंगे, 50 साल से भक्तों क्या गिनाएंगे, अनगिनत जन्मों से इतने जन्म हमारे हो चुके हैं। बता रखा है जैसे समुद्र के किनारे बालू, रेती, रेती को कोई गिन पाएगा। एक सुंदर उदाहरण है चींटे का, एक चींटा जो है वो चींटी के संग प्रेम कर रहा था, तो भगवान को हंसी आ गई, तो लक्ष्मी जी बोलते हैं प्रभु आप हंसे क्यों, भगवान बोलते हैं ऐसे ही बस, बोले आप ऐसे ही तो कोई आपके कार्य होते नहीं है, कुछ तो बात है, बोले नहीं अब पीछे पड़ गए तो फिर बताना ही पड़ेगा। तो हुआ क्या, भगवान ने बोला कि देखो मैं वो चींटे को देख के हंस रहा हूं, बोले उसमें हंसी क्या है, वो तो सारे संसार में सभी इस कार्य में लगे हुए हैं, बोले मैं हंसा इसलिए ये 71 दफे इंद्र बना है व्यक्ति, और अब ये 72वीं दफे चींटी बना है, चीटा अभी भी उसी में लगा है, कितने भोग भोगे थे इसने, तो ये मैं देख करके इसको जो है मेरे को क्या हुआ, बहुत ही मेरे को हंसी आ रही थी इसलिए कि देखो जीव कितना जो है उसकी आसक्ति, तो हमारा ये दस वर्ष बीस वर्ष में क्या होने वाला है, उसमें भी फिर साथ में अपराध है। यहां पर प्रार्थना कर रहे हैं, ये गजेंद्र जी की प्रार्थना चल रही है कि हे भगवान, आप तीन प्रकार की शक्तियों के दुस्तर वेग के नियामक हैं, आपकी माया को, भगवान की बनाई हुई माया को कोई पार कर सकता है, पहले बताइए। बिना उनकी कृपा से इस भव सागर को कौन पार कर सकता है, पहले बताइए। इसमें कितने प्रकार के इसमें वो हैं, खान पान, भजान, गान, सयान, पता नहीं क्या क्या कपड़े, क्या क्या वो सब, जिसमें व्यक्ति जो है भगवान को भूल करके उन सभी चीजों में फंसा हुआ है, याद भी नहीं आते हैं कैसे। एक छोटा सा उदाहरण है, एक गरीब व्यक्ति जो मजदूर था, वो जो है अचानक एक जगह बैठा था कि कोई मुझे बुलाए अपने घर में प्लम्बरिंग के लिए, इस चीज के लिए बैठे रहते हैं चौक पे, तो अचानक उसको 10 रुपए मिल गए। जब 10 रुपए मिले तो उसने क्या किया, सवेरे से शाम तक वो जो है सोचते रह गया कि मैं इसको क्या करूं, क्या लूं इससे, क्या ऐसा चीज लूं। शाम बीत गई तो अचानक याद आया, मैंने तो भगवान को याद करता था, भगवान याद ही नहीं आए। बोला प्रभु, 10 रुपए के चक्कर में सवेरे से शाम हो गई, क्या लूं, कैसे खर्च करूं, कहां लगाऊं, उसी में बिता दिया। तो सोचो जिनके पास करोड़ों होंगे उनकी क्या हालत होती होगी। वो सोचने लगा, जो करोड़ों जिनके पास होंगे वो कितना तबीयत से आपको भूले होंगे। तो 10 का नोट ले जाके वही छोड़ आया, बोला अब शांति मिली, याद हो रहे हैं, कम से कम याद आएंगे, प्रभु प्रसाद भोजन भी आपकी कृपा से मिला, सब ये काम भी, कभी कभी पूरा दिन हो जाता कोई पूछता ही नहीं है, कभी कभी आए बाद में, उससे पहले आपको चलोगे ना काम। तो सब कुछ जो है, जब तुम्हारा भगवान की इच्छा पर भक्त जब निर्भर हो जाता है, तो यहां पर गजेंद्र जी शरणागति ले रहे हैं, समर्पण की स्तुति, क्योंकि पिछले जीवन में उन्होंने ये स्तुति की है। उसको प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में कि हमें भी नरसिंह स्तोत्र याद करना चाहिए, जो इस जीवन में अभ्यास करेंगे हम, व्यर्थ नहीं जाएगा। स्वल्पस्य अपयस्य त्रायते महतो भयात्। इस मार्ग में कोई हानि ही नहीं है, थोड़ा सा भी जो है क्या बोलते हैं, किया हुआ कार्य जो है महान भय से रक्षा कर सकता है। आपने थोड़ा भक्ति करी और आप फिर आना छोड़ दिए, लेकिन वो भक्ति, वो धरोहर हुआ आपकी, ज्यों की त्यों पड़ी रहेगी वो। समझ लीजिए, यहां से आप ईस्ट ऑफ कैलाश जाना चाहें, रास्ते में शाम हो गई, आप धौला कुआं पर रुक गए, तो अगले दिन धौला कुआं से आगे जाओगे या पंजाबी बाग से आगे जाओगे? धौला कुआं से जाओगे ना आगे, मतलब धौला कुआं तक आप पहुंच गए, नष्ट होने वाला नहीं है। तो लेकिन कर्मों की बारीकियां कभी कभी हम लोग नहीं समझ पाते हैं, जैसे आप भी, गजेंद्र जी भी पिछले जन्म में इंद्रदम्न राजा थे और वो तपस्या में गए थे मलय पर्वत, और वहां पर जो है ध्यान मग्न भगवान में, और लेकिन उसी वक्त जो है शिष्टाचार का पालन नहीं हुआ, या फिर ये कहें महत कृपा भगवान की, आगे फिर और कृपा होने वाली है। तो कभी भी हमें जो ये कभी कभी श्राप मिल जाते हैं या दूसरी चीज मिल जाती है, ये हमारे लिए वरदान सिद्ध होती है। आपको पता है भगवान जो भी, तो उनके लिए तो वरदान ही हुआ, भगवान अपने साथ में लेके गए गजेंद्र जी को, अपने साथ में लेके गए और डिक्लेयर करके गए कि इस स्तुति को जो सुनेगा, सुबेरे शाम पाठ करेगा, वो जीवन के अंत में मैं उसको धाम लेके जाऊंगा। ये इसलिए गजेंद्र स्तुति भी हमें याद करनी चाहिए, और नरसिंह स्तोत्र याद करना चाहिए, ब्रह्म संहिता याद करनी चाहिए। ये स्तोत्र हमारे लिए सहायक हैं। हमारा महामंत्र में अभी उतना विश्वास नहीं है, न शुद्ध नाम जप पा रहे हैं हम, अपराध युक्त नाम जप पाते हैं, इसलिए महामंत्र पर्याप्त है, लेकिन हमारी स्थिति नहीं है, इसलिए नरसिंह स्तोत्र जैसे आप जब पढ़ते हैं, भक्तों को हम कभी कभी नरसिंह स्तोत्र जब बहुत बोलते, प्रभु जी बहुत माइंड विचलित है, भागवतम भी पढ़ी है, ये भी पढ़ा है, क्योंकि एक उम्र आती है, पिछले जीवन के पाप हैं, एसाम तो अंत गता नाम जना नाम पुण्य कर्मणा नाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त्वा। मोह और द्वंद से कौन जाएगा जिसके पिछले जन्म के भी पाप खत्म हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। नहीं तो मन एकदम जवानी के समय में बड़ा विचलित रहता है, किसी को कुछ समझता भी नहीं हो, अकड़ रहती है, बहुत सारा अहंकार रहता है, पता नहीं क्या, किसी कुछ भी मतलब समझ में नहीं आता, पढ़ रहे हैं, ज्ञान में भी हैं, डेली कर भी रहे, लेकिन माइंड एकदम वो है। तो ऐसे समय में क्या बोलते हैं, जब हम नरसिंह स्तोत्र भी पढ़ते हैं तो उसमें बता रखा है सर्वत्र विजयी भवः, सभी जगह से भगवान फिर हमारी रक्षा करते हैं। वो उनसे प्रार्थना हो जाती है, प्रभु मेरी तो योग्यता नहीं है, बस मेरी भक्ति की रक्षा आप करें, मेरा मन कहाँ कहाँ जाता है ये आपसे ज्यादा कौन जानता है, मैं बाहर भले ही मैं बड़ा दिखता हूँ, बड़ा दिखाता हूँ, लेकिन अंदर मेरी स्थिति क्या है, तो आप मेरी हर तरह से मेरी भक्ति की रक्षा करें। तो ये स्तुतियां इतना काम आती हैं, ऐसी ऐसी भगवान बचा के ले जाते हैं, साफ साफ बचा के लेके जाते हैं आपको। जैसे कि यहां पर घड़ियाल से 1000 वर्ष तक युद्ध हुआ, घड़ियाल पानी का जीव और ये बाहर के, अब हाथी कितना ही बड़ा वो ना हो, शरीर भारी है हाथी का, लेकिन अंकुश कौन करता है हाथी को बताओ, महावत करता है। इतना बड़ा शरीर लेकिन बुद्धि कैसी है, महावत से चलता है वो, इतने छोटे व्यक्ति ऊपर बैठा होता है। तो इतने बड़े शरीर का क्या फायदा, गजेंद्र जी बोल रहे हैं प्रभु। तो उनको स्तुति याद आई, स्तुति याद करते हुए और भगवान सामने देखते हुए उन्हें कमल का वो जो फूल तोड़ा और भगवान को अर्पित किया अपनी सूंड से, तो भगवान कैसे बचा लिए देखे, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले सिधारे। कहीं कहीं पर वक्ता लोग बताते हैं कि भगवान उस वक्त में अपने निज शयन कक्ष में थे, और जब पता चला यहां से स्तुति कर रहे हैं गजेंद्र जी, तो भगवान जो हैं तुरंत ही गरुड़ जी में बैठ करके इतनी जल्दी, इतने बेग, यहां पर बेग का अर्थ ये भी, भगवान से ज्यादा जल्दी फास्ट कोई चल के आ नहीं सकता है, सबसे तेजी सबसे तेज धावक दौड़ने वाले हैं, और सबसे स्लो चलने वाले भी, उससे ज्यादा स्लो भी कोई नहीं चल सकता है, हाथी भी नहीं चल सकता है उतना स्लो, क्योंकि हाथी भी बहुत उसमें चलता है ना, वैसे भी वो भी नहीं चल पाएगा। तो ये चीज प्रभुपाद जी ने जो ग्रंथ लिखे हैं, प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ने से किसी को भी अहंकार नहीं आ सकता, कोई भी ज्ञानी नहीं बन सकता है, वो निर्मल ज्ञानी बन जाएगा, क्योंकि प्रभुपाद सिद्धांत कहां कहां से, सारे शास्त्रों की कोटेशन, जिन शास्त्रों को हम कभी देखे भी नहीं होंगे सकल, वो शास्त्रों से भी कोटेशन, वहां से वो जो उस वक्त के लिए जरूरी है उसको ला करके उस तात्पर्य में डाल रहे हैं। तो हम प्रभुपाद जी के ऋण को कभी भी चुकता नहीं कर सकते, प्रभुपाद जी ने क्या दिया है, जो पढ़ेगा वो केवल रोएगा, बोलेगा प्रभुपाद न भूतो न भविष्य, आपके जैसा व्यक्ति कलयुग में संत अनेक हैं, प्रभुपाद विशेष हैं, ठीक है कि नहीं, प्रभुपाद जैसा कोई नहीं है, प्रभुपाद जी हैं क्योंकि भगवान के द्वारा भेजे हुए आचार्य हैं, शुद्ध भक्ति प्रभुपाद जी ने शुद्ध भक्ति तक, और भगवान को इसी जीवन में हम लोगों को दे दिया, हम लोग यहां वैकुंठीय वातावरण में जी रहे, देखिए कितना भव्य, कितना सुंदर डिजाइन, देखिए मंदिर का कितना सुंदर डिजाइन, इतना हाई क्वालिटी के, मतलब उसमें संगमरमर की टाइल लगी हुई है, अंदर भी आज तो मैचिंग कर रहा है डिजाइन और भगवान के वस्त्र सब है, नहीं तो पूरा आनंदमय, क्या आनंद दे दिया। ये आनंद कैसे संभव है, भगवान की कृपा के कारण, लेकिन कभी कभी पाप कर्म और अपराधों के कारण। एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, आपको समझ में आएगा कि कैसे हमें लगता है कि ये मेरे संग क्यों हुआ, भक्त के संग ऐसा क्यों हुआ, ये तो भक्ति कर रहे थे, उनका एक्सीडेंट कैसे हो गया, उनका ऐसे कैसे हो गया, उनको ये बीमारी कैसे आ गई। बड़ी सुंदर घटना है, एक दफे एक राजा जी ने ब्राह्मणों को बुलाया अपनी सभा में, उनको भोजन करने के लिए निमंत्रण दिया कि उनका इच्छा हुआ कुछ का हरि कथा सुने और भोजन उनको प्रसाद खिलाएं। और जिन रसोइये, अब राजा के रसोइये बना रहे थे बाहर खुले में, और उसी दिन पता नहीं क्या घटना घटी कि ऊपर से एक चील जो है एक सांप को लेके जा रहा था अपने उसमें पंजों में दबा करके, सांप छटपटा करके क्या कर रहा है, अपना अपने को बचने का उपाय कर रहा है, उसने जो है फन मारना चाहा, तो वो जहर की बूंदें जो है कहां गिर गई, जहर की बूंदें ठीक कहां गिरी, जहां पर ये रसोईया जो बना रहा था उनमें, उन भगवानों में, अब 2-3 बूंद इस प्रकार से गिर गई सब में। अब ब्राह्मणों ने उसको पाया, पाने के बाद में क्या हुआ, उन सबकी मृत्यु हो गई। राजा इतना दुखी हुआ, मैंने उनको क्या बोलते हैं ब्राह्मण सेवा के लिए बुलाया था, और मेरे राज्य में इस प्रकार से कैसे हो गया, इतना दुखी, पूरा मातम में एकदम, क्या करूं मैं। रसोई अलग दुखी कि हमने मतलब हमको तो पता ही नहीं बिल्कुल कैसे क्या हो गया है, या हम दंड के भागी बनेंगे। तो बता रखा है यमराज जी भी परेशान हो गए कि दंड दो तो किसको दूं, चील को दंड दूं, बोले वो भी भैया अपना शिकार ले जा रही है, अब सर्प को दंड दें, उसका भी कोई ऐसा प्रयोजन नहीं था ब्राह्मणों को मारने का, वो तो अपनी रक्षा के लिए विष निकाला, न रसोइयों ने कुछ किया न राजा ने कुछ किया, राजा तो दुखी है, तो क्या करें किसको दंड दें। तो बता रखा है कुछ इन्हीं ब्राह्मणों के दूसरे ब्राह्मण भाई लोग इनको ढूंढते ढूंढते राजा के महल की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में एक स्त्री दिखी, उन्होंने बोला राजा जी, वो राजा जी यही है, बोले हाँ यही है, तो उनके घर हमने जाना है, बोले घर जरूर जाओ, राजा बड़े अच्छे हैं इस ढंग से, लेकिन ध्यान रखना राजा भोजन में जो है विष मिला करके देते हैं, इसलिए ये ध्यान रख लेना, वहां पर जाके मर भी सकते हो, तुम मर जाओगे, राजा विष पिलाता है, क्योंकि ये फैल गया था राजा के यहां भोजन में आए ब्राह्मण लोग मरे। इतने में यमराज जी ने बोला कि हाँ मुझे मिल गया किसको दंड देना है, मुझे मिल गया दंड किसको देना है, तो दंड का पात्र किसको बनाया, ये स्त्री को। तो सबने बोला, यमराज जी के दूतों ने बोला कि ये स्त्री को आप जो है दंड का पात्र कैसे बना सकते हैं, उसने क्या किया बता, उसने तो सही बात बताई। तो सही बात नहीं बताई, बोले सही बात कहां थी, हम किसी के लिए कुछ भी बोल देते हैं, वो सही बात थी, राजा ने थोड़ी ऐसा किया था। बोले इसका दंड तो राजा लोगों को ही मिलना चाहिए, चाहे जाने अपरा अनजाने में। बोले राजा को और रसोइये को, चील को और सांप को इसलिए नहीं मिलेगा, उनका वो नहीं था, क्या बोलते हैं उसको, शब्द, उनका ऐसा उद्देश्य नहीं था, और राजा दुखी भी था, अगर राजा आनंद उसका आनंद मनाता कि मर गए, आनंद मनाता तो सब उसमें दुखी थे, इसलिए उनको कर्म का दंड नहीं मिलेगा। इसमें निंदा कर करके राजा की आनंद लिया, इसलिए इसको जो है पाप का भागीदार बनाया गया है। तो सोच सकते हैं, अब वो बोलेंगे मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, कभी कभी हम लोगों को लगता है हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, हम कहां पर किसको देख के हंसे थे, किसको हिंट मार के हंसे थे, क्योंकि ये तो जीव का इतना ऐसा स्वभाव है, हम लोग इशारों में बहुत कुछ कर देते हैं, तो लेकिन हमने वो इशारों में हिंट मार के आनंद लिया, पक्का दंड मिलेगा, बच नहीं सकते, छुप नहीं सकते पाप तुम्हारे, रे मूर्ख इंसान कि सब कुछ देख रहा भगवान, बच नहीं सकता है कोई भी, इतना मायने क्या बोलते, गहना कर्मणा गति ही, हम लोगों ने क्या क्या किया होगा इसी जीवन में, आप समझ सकते हैं ना, इससे कितनी जगह हम हंसे होंगे, कितनी जगह हमने ऐसे बढ़ा चढ़ के हाँ वो भी ऐसा ही है, कितनों के लिए हमने बोला होगा, कभी हमने ये विचार किया होगा कि जो बोल रहा है उसको ही बुला लिया जाए। कभी भी ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई भक्त किसी भक्त के बारे में कुछ बोल रहा है तो उनको पहले तो सुनो ही मत, बोलो प्रभु जी हो सकता है सही हो या गलत हो, मैं आपका मान करता हूं, ऐसा करते हैं उनके साथ नहीं बैठ लेते हैं, भाग खड़ा होएगा वो, तो तब बोलना फिर भैया ये तो बदमाशी है ना, अगर सामने बैठ करके बात करना चाहता है तो वो सच्चा इंसान है, नहीं करना चाहता है तो जरूर घोटाला है, नहीं नहीं वो प्रभु जी फिर बुरा मान जाएंगे, फिर संडे प्रसादम नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं, कोई चिंता नहीं है, कर्म से तो बच जाओगे आप, किसी के लिए भी हमने कुछ भी सोच लिया और अपनी दुनिया बना ली। अरे भाई उस व्यक्ति, क्योंकि हल यही है, दो जनों के बीच में जो बात हो रही है उसको दो जने में ही बात कर लें, वो भी बुलाएं प्रभु जी शांति से हम लोग वार्तालाप करेंगे, आप बताइए पहले फिर आप बताइए, ऐसा ऐसा अपने आप बोले, नहीं तीसरे ने बोला था कोई बात नहीं उनसे भी पूछ लेते हैं, फोन को ऑन रखिए और पूछ लीजिए, एक मिनट में हो जाएगा, सही है तो ठीक वो कीजिए, नहीं है तो फिर जिसकी गलती है, अक्सर क्या होता है गलती जिसकी नहीं होती वो भी डांट खाता है कभी कभी, उसी को दूसरा साफ बच निकलता है अपने झूठ से, तो जो उसको दंड देने वाला भी है जिसने उसको दुखी किया उसको भी कितना दंड मिलता है कभी सोचा है। तो इसलिए राजा को भी जब मनु स्मृति आप पढ़ेंगे तो इसमें इतना माइनर बातें बता रखी कि हम सोच भी नहीं सकते। तो प्रत्येक चीज का हर एक्शन का रिएक्शन होता है, तो ये जो है हमें इस चीज से ये मिल रहा है कि जरूर इतना सा अपराध देखिए, ध्यान मग्न है वो, लेकिन उनको इतना पता चल रहा था क्या कि कुछ कुछ लोग आए हैं, उन्होंने आंखें भी खोली थी। किसने? इंद्रदुम्न राजा जी ने। अगस्त मुनि आए थे अपने शिष्यों को लेकर के, तो लेकिन सम्मान नहीं किए, वो ध्यान में ही रहे। शिष्टाचार तो ये है कि भाई इतने बड़े भक्त आए हैं और आप भी भक्त ही हैं, आप भी वैष्णव थे, तो कभी कभी क्या होता है हम लोग मतलब क्योंकि माइंड ठीक नहीं होता है, क्योंकि मन शुद्ध नहीं है, मन मलिन है, तो इस कारण से क्या होता है हम लोग क्लास लेते हुए भी, क्योंकि कलयुग में भूलने की प्रवृत्ति है, क्लास लेने वाले भी नहीं लेने वाले भी बैठे वाले बहुत बहुत दफे बहुत कुछ भूल जाते हैं, कभी कभी सम्मान के कारण, कभी इस कारण से हम मतलब किसी आदर वो चीज नहीं कर पाते हैं, या किसी से ऐसे ही सुन लिया कुछ भी, तो उस कारण से हम लोग क्या है दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ भी मन में मतलब उतने दिन तक, पता जितने दिन तक हम उस व्यक्ति के लिए या उस भक्त के लिए घृणा लिए रहेंगे या मन में उल्टा सुल्टा विचार लिए रहेंगे तब तक आपकी माला अच्छी नहीं हो सकती है, ये शास्त्र की बात है। तब तक माला अच्छी मतलब माला का जो रियल फल है वो नहीं मिल पाएगा। तो कितना माइनर हुआ पे आप सोचिए, ये भक्ति का मतलब लेजर की धार पे ब्लेड में चलने जैसा है भक्ति, वत्सल भक्ति सिद्धार्थ महाराज जी कहते थे, इसलिए अगर ऐसे समझे तो, और बहुत आसान भी है। अगर गुरु गौरांगों को शरणागत हो गए, आश्रय लैया जई, आश्रय लेके भजन किए, अपने दोषों का चिंतन और दूसरे के गुणों का चिंतन, दूसरों की सेवा करने का कि मेरे से कितने अच्छे हैं, हर तरह से मेरे से कितने अच्छे हैं, जब व्यक्ति समझता है तो व्यक्ति को फिर भक्ति में बहुत जल्दी शीघ्र ही आगे बढ़ता है, फिर उसको टेंशन नहीं रहता है। तो इसीलिए बताया भी गया है हरि भक्ति विलास में श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने की विधि, अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम् रक्षस्यति तीति विश्वासो गोतृप्त्वे वर्णम् तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। छह प्रकार से भगवान को शरण में हम गए हैं ये पता चलता है कि हम शरण में हैं या नहीं हैं, ये तो विपत्ति के समय में पता चलेगा आप शरण में हो या ना हो। जैसे एक भक्त था, माला भी करता था, सब दर्शन सब कुछ, भागवत क्लास सब कुछ सुन रहा है 20 साल से, अचानक उसके मन में जागा कि भगवान आपकी कृपा महसूस नहीं हो रही है, मतलब पता नहीं चल रहा है आपकी कृपा को मैं महसूस करना चाहता हूं। तो भगवान ने भी सोचा 20 साल तो भजन किया भाई, इसको थोड़ा महसूस करा दें। उन्हें बोला ठीक है, तुम सवेरे सवेरे क्या करते हो, रेती में चलने जाते हो, तो कल देखना, कल से वहां पर चार पैर दिखाई देंगे। गया तो चार पैर मतलब चार पैरों के चिन्ह, तो उसने मैं तुम्हारे साथ हूंगा, मतलब तुम्हारे संग संग चलूंगा। तो दो उसके पैर और दो भगवान के पैर जो है, बड़ा खुश हुआ, बोले वाह भगवान आपने मेरे को अनुभव कराया कि इस प्रकार से। अब कुछ दिन बाद क्या हुआ, थोड़ा सा उसको कष्ट आया, विपत्ति आई कि सारा उसका सब कुछ बिजनेस सब डाउन हो गया, तो सारे रिश्तेदारों ने भी छोड़ दिया, इसने भी छोड़ा उसने भी छोड़ा। और तब उस वक्त वो क्या देख रहा है कि दो ही चरण है वहां पर, दो ही चरण चिन्ह दिखाई देने लगे। तब सोचने लगा भगवान सबने छोड़ा वो तो समझ में आता है, आप तो ऐसे नहीं हो, आपने भी छोड़ दिया। तो भगवान ने बोला मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा तुमको, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। बोले देखिए इनकी दो ही चरण दिखाई दे रहे हैं तो आपने छोड़ा ही मेरे को। इसलिए भगवान बोलते हैं मैंने छोड़ा नहीं, ये जो दो चरण हैं ये मेरे हैं, तुमको तो मैं गोदी में उठाया हुआ था, इसलिए वो दो ही चरण जो हैं क्या हुए दिखाई दिए। तब उसको समझ में आया, उसके बाद फिर से भगवान इनकी चार चार उसको दिखाई देने लगा, लेकिन उसको समझ में आया कि भगवान किस प्रकार से भक्त को हर तरह से प्रोटेक्शन देते हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति के थ्रू दिलाए उसके माइंड में बात डाल देंगे, किसी इसके थ्रू उसके थ्रू, भगवान इतने दयालु। हम लोग भूल जाते हैं, याद रखना, हम लोग इंतजार कर रहे हैं कब गलती करे इंसान और मैं उसकी चर्चा शुरू करूं। वास्तविक मित्र वो है जो आपके गुणों को पब्लिक में बोलता है और दोषों को आपके पास में बैठ के बोलता है, आपके पास बैठ करके चर्चा करेगा, वो है वास्तविक मित्र, और आपके गुणों को पब्लिक में बोलेगा। यहां ठीक उल्टा होता है, पब्लिक में जो है सारे अवगुणों को दोषों को है नहीं। और वास्तव में बड़ा व्यक्ति कौन है? बड़ा व्यक्ति वो है जिसके पास बैठने से व्यक्ति अपने आप को छोटा महसूस ना करे। वो ये समझाता है कि तुम भी मेरे प्रभु के अंश हो, मैं भी उनका अंश हूं। तो तुम आत्मा हो, इंडिविजुअल, तुम कोई साधारण नहीं हो। भगवान की ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने, एक भक्त अपने आगे दूसरे को इंफीरियर नहीं करता है। बड़ा वो है जिसके आगे बैठने से आपको अपने को छोटा महसूस ना होए, ये है वास्तव में बड़ा। तो भगवान जो है कैसे कृपा करते हैं, तो शरणागत, हमें शरणागत होना है गजेंद्र जी की तरह से। बिल्कुल उनके लिए तो भगवान आए, उनको उन्होंने तो स्तुति भी की, पूरी स्तुति ही है। आज 28वां चल रहा है, कल 29वां, पहला श्लोक छोड़ करके ये 29, मतलब 28 श्लोकों में उन्होंने स्तुति की है। ये 28 श्लोकों की स्तुति जो है हमें गजेंद्र जी की, इसको याद करना चाहिए। और कितना उसमें, कितना सुंदर स्तुति की है। ये स्तुति जो है भागवत का सार है। जैसे 12 श्लोकों में जब ध्रुव महाराज जी को शंख छुआया था, ध्रुव महाराज बोलना चाहते थे, कुछ बोल ही नहीं पा रहे भगवान के आगे, जो ही शंख छुआया तो 12 श्लोकों में जो है वो भगवान का गुणगान करने लगे। ऐसा गुणगान कि बता रखा पूरे भागवत का वो सार है, वो ऐसा अद्भुत गुणगान। तो हमें भी ये जो हम कर रहे हैं, ये जो मंगल आरती आते हैं, आप क्या सोच रहे हैं, ये सब ऐसी, भगवान इतने सत्य संकल्प हैं, छोटी सी चीज को भी भगवान नहीं भूलते हैं। आपने अगर व्रत ले रखा है एकादशी, आपने अगर व्रत ले रखा है 16 माला करूंगा, तो भगवान ने भी व्रत ले रखा है कि कोई एक दफे कह दे, लंका कांड में श्लोक ही है, मेरे को याद नहीं है, कोई एक दफे कह दे कि मैं आपका हूं, भगवान तो पहले से ही यानी कि उसको ले जाने के लिए तैयार हैं। भगवान का भी व्रत है, भगवान उसको कभी नहीं छोड़ते हैं, किसी अवस्था में नहीं छोड़ते हैं। एक और छोटी सी घटना है, मेरे को स्मरण आ गई। एक सेठ व्यक्ति था, उसने अपने लिए समुद्र में जाने के लिए नाव बनाई, बड़ी अच्छी सुंदर एकदम, इतनी बढ़िया नाव बनाई, और उसमें वाटरप्रूफ जैकेट भी लगा लुगू करके वो समुद्र में गया घूमने के लिए पर्सनल। आज क्या हुआ, जब वो समुद्र के बीच में गया तो तूफान आ गया अचानक। ऐसा तूफान आया कि नाव सब तहस नहस हो गई और ये नीचे गिरा, और वाटर जैकेट की सहायता से जैसे तैसे ये एक बीच टापू में, जहां चारों तरफ समुद्र था और बीच टापू में। तो सोच रहा है, भगवान मैंने आपका क्या बिगाड़ा, मैंने ऐसा क्या कुकर्म किया था कि जो है मेरे को इस प्रकार से, मैं कहीं का नहीं रहा, उधर भी समुद्र इधर भी समुद्र, अब मैं ये लाइफ जैकेट भी पानी से भर गई, कैसे पार जाऊं, मुश्किल है, नहीं पार हो पाऊंगा, क्या करूं। तो वहीं पर रह करके वो जो है ऐसे सोच रहा था, उसने पत्ते वत्ते खा करके अपना, अब पूरी जीवन भर ऐसे ही रहना पड़ेगा, कैसे हो गया। तो उसने सोचा, चलो अब क्या करूं, जीना तो है, कुछ ना कुछ अगर टापू में छोड़ा है, मेरे को यहां तक लाए हैं, मैं तो मार भी सकते थे, ये भी विश्वास जाग रहा है, इस बचा भी दें, वही भगवान बचा सकते हैं अब। लेकिन फिर जो है मन में जो है हम लोगों के चिंता ज्यादा चलती है, ऐसा किया क्यों आखिर मेरे से। और तब तक उसने एक झोपड़ी बनाई, जैसे तैसे सोचा कि कम से कम चलो झोपड़ी तो हुई, अंदर सोऊंगा, बाहर हवा हुआ कुछ, या कोई प्राणी आ जाए उसका, या हुएली आके मुझे चंपत कर जाए, नीली हुए। तो ऐसा करके अंदर सोने को हुआ, जो ही सोया तो क्या हुआ पता नहीं, आकाश में बिजली बिजली कड़की, और एक बिजली उसके झोपड़ी में भी उस दिन कुछ ऐसा होना था, और वो झोपड़ी क्या हो गई, पूरी जल गई एकदम। अब तो एकदम बोले, प्रभु मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया, मैंने ऐसा किसका क्या बिगाड़ा था, ये क्या हो गया, और अब तो मैं पार कैसे होऊंगा, मैं ऐसे ही मुझे रहना पड़ेगा ये बिना, ये थोड़ा सा सहारा था, इतना कर ही रहा था कि दो नाविक वहां पर आए और उतर करके बोल रहे हैं, भाई हम आपकी सहायता के लिए आए हैं, चलो अच्छा किया तुमने अपनी झोपड़ी को जला दिया, तो जिससे हमने सोचा कि कोई शायद सहायता मांग रहा है। तब अंदर ही अंदर सोचता है, मैंने नहीं जलाई, प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, देखा झोपड़ी जलाई तभी तो ये आए मुझे ले जाने के लिए। अगर आप जलाते, मतलब जलाना भी कितना उत्तम काम है, भगवान के द्वारा कोई चीज ऐसी होए, वो भी हमारे उद्धार के लिए ही है। तो हमें हमारे जीवन में जो संकट, बहुत सुंदर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, प्रभुपाद जी के तात्पर्य इतने अद्भुत होते हैं। तत्ते अनुकंपाम सुसुमिक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृदवाग्य पुरभी विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। ये श्लोक जो है प्रचलित है भागवत का, और इसको हम बार बार पढ़ करके सुनना चाहिए। जो आपकी कृपा का इच्छुक है और इस तरह अपने विगत कर्मों के फल के कारण सभी विषम परिस्थितियों को सहन करता है, भक्त को बता रखा है, कोई मारता है भागवत के पहले स्कंद में, उनको मारता है, कोई गाली देता है, कोई उसको बहुत कुछ करता है, ठीक है कि नहीं, उसके बाद भी वो बदला लेने का भावना नहीं सोचता है। ये भक्त के लक्षण है, वैष्णव के लक्षण, और वो सभी स्थितियों को सहन करता है। और भगवान भी यही कह रहे हैं, भगवान की आज्ञा क्या है, ताम तितिक्षव भारत, तुम सहन करना सीखिए। जो मन वाणी तथा शरीर से आपकी भक्ति में सदा लगा रहता है और सदैव आपको नमस्कार करता है, वह निश्चित ही मुक्ति का योग्य का पात्र है। जो भक्त इस भौतिक जगत में सब कुछ सहकर भक्ति करता है, मुक्ति पदे सदाय भाग, अर्थात मुक्ति का प्रामाणिक पात्र वही है, उसी को मुक्ति मिल जाती है। कैसे, जैसे कोई व्यक्ति अपने पिता, जैसे उसके पिता अगर शरीर छोड़ के चले गए, वो नाम जमीन नहीं भी करके गए तो सरकार के द्वारा हो जाती है। तो जो व्यक्ति जीवन पर्यंत भगवान का नाम लेता है, दर्शन करता है, भक्ति के कार्यों में लगा रहता है, उसका अधिकार हो जाता है क्या, गोलोक धाम वापस जाना, वैकुंठ वापस जाना, ये गारंटी है। जैसे गजेंद्र जी का क्या हो गया, ऐसे विकट परिस्थिति में भी सोचिए, उसके पत्नी बच्चे सब वहां से छोड़ के चले गए, सब देख लिया। तो और भगवान देखिए रिटर्न में कैसा देते हैं, भगवान स्वयं आके रक्षा करते हैं, ये अद्भुत बात है। स्वयं आकर के, बीरबल जी का प्रश्न था, भगवान आप स्वयं आकर के रक्षा क्या बोलते हैं, अकबर का प्रश्न था बीरबल जी से कि भगवान स्वयं आके रक्षा क्यों करते हैं, क्या उनके पास में अपनी शक्तियां नहीं है। तो बीरबल जी ने बोला कि कुछ दिन मेरे को दे दे तो मैं बता दूंगा आपको फिर क्यों ऐसा करते हैं भगवान। बोले बीरबल तुम हमेशा कुछ दिन बोलते हो। बोले प्रभु कुछ चीजें एक मिनट में समझ में नहीं आती हैं, तो थोड़ा सा समय दीजिए। अब समय दिया, अब डेली ये अपने मॉर्निंग वॉक में जाते थे और वापस आकर के उस वक्त तक बीरबल क्या करते थे, उनके बेटे को घुमा रहे होते थे, तो ये आके फिर अपने बेटे के संग घूमते थे और आगे ही स्विमिंग पूल बना हुआ था तालाब, उसमें स्नान करते थे। बीरबल ने क्या किया, हूबहू उनके पुत्र के जैसा वो बनाया पुतला, और पुतला बना करके उस दिन वो क्या कर रहे थे, वो देख रहे थे दूर से आ रहे हैं, जो काफी दूर थे केवल दिखाई दिए, तो अचानक ऐसे घुमाते घुमाते क्या हुए, धक्का लगा और पुत्र कहां चला गया उनका, सीधे उसमें, और ये तेजी से भागते हुए आए और सीधे ड्राइव लगाई ऊपर से और नीचे जाकर के उसको क्या किए, बचा लिए। और ऊपर देखते हैं क्या, ये तो पुतला है। बोलते बीरबल क्या मजाक है, तो बोलते हैं जहां पनाह, पहले तो ये बताइए कि आप इतनी जल्दी और इतने भागे भागे इसमें क्यों कूदे, अपने पुत्र को देख के कूदा मैं। बोले आपके पास भी तो सैन्य बल है, सैनिक हैं, सेनापति हैं, ये हैं, तो मेरे को ही बोल दिए होते। बोले मेरे को किसी पर उतना विश्वास नहीं है जितना अपने ऊपर विश्वास है, तो मेरा प्राण, मेरे जिगर का टुकड़ा, उसको बचाने के लिए मैं, इसलिए। तो इसी प्रकार भगवान भी क्या कहते हैं कि अहम भक्त पराधीना, भक्त वत्सल भगवान, वत्सल मतलब जैसे, वत्सल का मतलब ही होता है जैसे गाय को अगर कहीं ले जाना है, अगर उसका बछड़ा हुआ है तो बछड़े को ले जाओ, गाय पीछे पीछे अपने आप आ जाएगी, वत्सल का मतलब यही है। तो जहां पर भगवान जो है उस भक्त के पीछे पीछे चलते हैं, वो जहां जाए तीर्थंति कुर्वाणी। प्रभुपाद जी अमेरिका में गए राधा कृष्ण को ढोते हुए, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, प्रभुपाद जी ने चरण रखे अपने अमेरिका में, पूरा अमेरिका धाम बन गया। वेस्ट वर्जीनिया को प्रभुपाद जी बोलते हैं लुक्स लाइक न्यू वृंदावन, मतलब ये जो है वृंदावन है, न्यू वृंदावन, ये वृंदावन की पूरा पहाड़ियां लग रही हैं, 10-10 हजार गाय हैं वहां पर, उनके सारे भक्त हल भी जोतते, सारी फसल सब कुछ वहां से काट के निकलता है। क्या बना दिया, देखो क्योंकि भक्त का विजन, भक्त की सोच कैसी है। तो ये जो है इस प्रकार से जब हमारा भी भावना ऐसी शरणागति हमारी होएगी, छह प्रकार की शरणागति में बता रखा है कि पहला है अनुकूल, जितनी भी भक्ति की अनुकूल बातें हैं, चीजें हैं, उनको स्वीकार करना। दूसरा है प्रतिकूल बातों का बहिष्कार करना, जो जिनसे कृष्ण स्मरण नहीं आते हैं, जिससे हम दूर जाते हैं उनसे। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो एक एक दिन के लिए, एक दिन भी कम है, एक के ऊपर अगर डिटेल दें खाली, अनुकूल क्या है, प्रतिकूल क्या है। तो तीसरा है कृष्ण द्वारा संरक्षण पर पूर्ण विश्वास होना, किन किन को विश्वास हुआ था, ठीक है कि नहीं, उस सब का इसमें, किन किन को विश्वास हुआ था के लिए आप वैष्णव चरित्र पढ़ लीजिए, उन सबको विश्वास ही विश्वास है। हर दिन सोने से पहले भी एक वैष्णव चरित्र पढ़िए, आप देखना आपका जीवन भक्ति से भर जाएगा, प्रेम से भर जाएगा। चौथा है भगवान को संरक्षक या स्वामी के रूप में, कि वही मेरे जो है अवश्यमेव रक्षमामि, वही रक्षा कर भी रहे हैं, करे भी हैं और आगे भी करेंगे। और पांचवा है आत्मसमर्पण, जैसे गजेंद्र जी ने सब फुल सरेंडर किया, और ऐसे ही आगे छह दीनता, फिर दीनता भी, क्योंकि भक्त अकड़े नहीं रहता है, वो दीन भाव से उसको ये पूर्ण विमल ज्ञान होता है, निर्मल ज्ञान उससे शरणागत होता है वो भगवान को। लेकिन संसार में क्या है, हमारी स्थिति अभी ऐसी है, तू करता वही है जो तू चाहता है, हमारे जीवन में उन्नति क्यों नहीं हो रही है। हम सुनते भी हैं, सब कुछ करते हैं, गुरु भी बनाते हैं, ब्राह्मण दीक्षा तक भी ले लिया है, लेकिन फिर भी क्या है, तू करता वही है जो तू चाहता है। हर व्यक्ति अपने में आकलन करे कि मैं क्यों फेल हो रहा हूं, हम आश्रय नहीं लेते हैं, समर्पित नहीं होते हैं। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूं, तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। समझ रहे नहीं, इसका मतलब क्या है, जैसे आपने एक नौकर लिया, आपने अपनी खुशी के लिए नौकर रखा, अब नौकर को बोला भाई ये मोबाइल यहां से यहां रख देना। अब कभी कभी लोग सुनते नहीं ना, वो उधर नहीं रखे, वो आपका दिमाग खराब होने लगता है, मैंने उधर बोला था ना तुमको, वो ठीक है फिर बाद में उधर रखता है, जो चीज कहो उसको भूलता है वो सब कुछ। वो तीन दिन में बोलता है कि तुम मेरा बीपी हाई कर दोगे, कहां से आए हो, कितना पैसा लोगे बताओ, घर जाओ अपने, एसी में टिकट करके देता हूं, पैसे बचेंगे मेरे। ठीक है, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं, ठीक है कि नहीं। अब वही सर्वेंट मान लिया, पहले वो बोले कि यहां से मोबाइल इधर रखो, बिल्कुल सुन करके उधर ही आता है, उसको बड़ी खुशी, हाँ मैंने मेरा सुख, ये ऐसा करो ऐसा करना। तो एक महीना हो गया करते करते, इसको पूरा दिल जीत लिया, एक दिन अचानक फोन पे लगा हुआ था वो मालिक, तो इसको सब्जी लेने जाना था, बोले मालिक मैंने वो गोभी भी ले आऊं क्या, वो फोन को बोला एक मिनट होल्ड करना, ऐसा है ना तुमको जो लाना होता है ले आया करो, मेरे से पूछा मत करो, ले आया, मतलब उसका दिल जीत लिया। इसलिए वो क्या बोला है, तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है, ऐसा शुद्ध भक्त तो बने। तो कर कैसे, पहले भगवत गीता पढ़े तो सही, भगवान का संदेश क्या है, मैसेज ऑफ गॉड हेड, टिंग टिंग फट से उसको एक मिनट में इतनी जल्दी ध्यान जाता है, माला कहां, मैंने देखा है फोन आते आते ऐसे उठते हैं जैसे सारी दुनिया हिल गई हो, पता नहीं लाख रुपए का चेक कुछ आने वाला नहीं, यही होगा मेरा चेक कब दे रहे हो, तो सर मुड़ाते ही बोले पढ़ना, फिर वापस ही आएगा वो, या ये बोलेगा वहीं मरे रहोगे घर भी आओगे, या ये होगा उसमें, या बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना था फिर भूल गए, शादी क्यों करी, फिर कुछ ऐसे ही मैसेज होंगे, उसको पढ़ने के लिए उतावले एकदम पीछे पड़े, ऐसे उठते हैं जैसे कि हीरा मिल गया, बीच में पूरा तंद्रा भंग हो जाती है, नींद खुल जाएगी वहां पर, टोटली मोबाइल कॉन्शियसनेस। तो लेकिन भगवान के लिए वैष्णवेते नामेते उल्लास, वैष्णव के नाम के लिए कहां हमारे पास उल्लास है बताओ, भगवान का ये करने के लिए सब। तो उत्साह पूर्वक व्यक्ति भक्ति वही कर सकता है जो जियो जिए, जो जियो और जीने दो बोलते ना फिलोसफी, जो ये सोचता है कि हर व्यक्ति का अधिकार है, हर व्यक्ति अच्छा खाए अच्छा पिए, भगवान का अच्छा से स्मरण करे, उसको भी सब सुविधा मिलनी चाहिए। मेरे पास ये भावना होए तब आप शांतिपूर्वक भजन कर पाते हो, जब ईर्ष्या नहीं होगी। इसलिए प्रहलाद महाराज मांग रहे हैं कि भगवान मुझे किसी से भी ईर्ष्या ना हो, किसी से, भक्तों की तो बात छोड़ दीजिए, किसी से भी जो नियम तोड़ रहे हैं पूरा छक करके, उनसे उनके प्रति भी मेरे को घृणा का भाव ना रहे, तो तभी तो भजन हो पाएगा बढ़िया से, तभी तो माला कीर्तन या सदाहरी हो पाएगी। ठीक है, तो हम लोग गजेंद्र जी के इस जो प्रसंग चल रहा है, स्तुतियां चल रही है, इससे यही है, भगवान कहते भी हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगंतम। उन लोगों को जो भूलना चाहते हैं, अभक्तों और नास्तिकों को उनका साक्षात्कार न हो, ये भगवान क्या करते हैं, फिर उनको भुलाते हैं अपनी माया शक्ति से, अच्छे से, दुस्तर वेग से। लेकिन वहीं पर मम माया दुरत्या, जो उनके भक्तों के शरण ले लेते हैं, मैं यहां पर देवी सीधे राधा रानी की शरण नहीं, राधा रानी की शरण गुरु के थ्रू ली जाती है, गुरु की शरण भी भक्तों के थ्रू, उनके जो अंतरंग है उनके थ्रू ली जाती है। तो जो वैष्णव की शरण, मैं यहां ये कहूंगा, जो वैष्णव की शरण लेकर के भजन करता है उसको जो है कभी भी कृष्ण त्यागते नहीं है। आर सम मरे अकारण, बाकी सब तो भजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या फल मिलेगा कोई पता नहीं। तो हे भगवान, ये भजन का अर्थ पढ़ रहा हूं मैं, सर्वस्व आपके चरणों में सौंप कर। अच्छा, टाइम कितना हुआ? ओ टाइम तो हो दिखाई नहीं, इसको पढ़ देता हूं, खाली पढ़ देता हूं। सर्वस्व, हे भगवान, सर्वस्व आपके चरणों में सौंप कर आपके घर में पड़ा हुआ हूं। शरणागति क्या होती है? आप मालिक हैं, आप मुझे अपना कुत्ता समझें। और कुत्ते का ही उदाहरण क्यों है यहां पर, बकरी क्यों नहीं लिख दिया? बकरी आज्ञा पालन नहीं होती, वो तो थोड़ा सा उसको अवसर मिले वो खेत में जाती है और पिटाई खा के आती है वापस। हम लोग जो पिटते हैं संसार में वो क्यों? गुरु गौरांग की शरण में नहीं रहते हैं, आदत बहोरी वाली है ना बकरी जैसी, इसलिए पिटाई लगती है। तो यहां पर कुत्ते का उदाहरण इसलिए दिया गया, कुत्ता बड़ा वफादार होता है। अपने पास बांध कर मुझे रखना, मैं आपके दरवाजे पर रहूंगा। अजनबी लोगों को, अर्थात जो भगवान के भक्त नहीं है, उन्हें घर के नजदीक नहीं आने दूंगा। यहां अजनबी का मतलब है काम क्रोध लोभ मोह को अंदर आने नहीं दूंगा, उन्हें तो आपके घर से दूर ही रखूंगा। जब आपके भक्त प्रसाद सेवन करेंगे तो जो उच्छिष्ट बचेगा वही मेरे प्रतिदिन का परम आनंदमय भोजन होगा। क्योंकि कुत्ते का गुण है, वो हमेशा ये सोचता है कि मेरे मालिक का क्या बने, ग्रास बढ़ेंगे तो मुझे भी उतने ग्रास मिलेंगे। लेकिन बिल्ली क्या सोचती है, मेरे मालिक की आंखें फूट जाएं तो मैं दूध चट कर जाऊं, समझ रहे नहीं? बिल्ली का ऐसा गुण है। तो कुत्ता हर तरह से योग्य है, इसलिए कुत्ते का यहां पर बात बता रहे। वो जो है आगे बोलता है, मैं बैठते सोचते निरंतर आपके चिंतन करूंगा। कुत्ता सदा मालिक का चिंतन करता है, पता है, एकदम प्रणाम भी करता है सवेरे सवेरे, और चिंतन करे रहेगा, किसी को अंदर नहीं आने देगा। कितना लॉयल है अपने रोटी के लिए। जब आप मुझे पुकारेंगे तो नाचते नाचते आपके पास आऊंगा, टॉमी कमोन, तो एकदम ऐसे ऐसे करके आता है। ये शरणागति, ऐसी शरणागति कब होएगी हमारे जीवन में? ऐसी शरणागति जिस दिन हो गई, उछलोगे 7 फुट ऊपर। हम अभी 7 फुट क्या, आधा फुट भी नहीं उछल पाते, क्यों है समझ लेना। जब कीर्तन में नाचने का मन नहीं करे तो तहां ते अपराध प्रचुर। सही में कीर्तन हो और नाचने का मन ना करे, वही तो फल है। कोई बोले फल क्या है, बोले नाच लो, वही फल है। नाच कौन सकता है? समाधि के स्तर वाला व्यक्ति नाच सकता है। कीर्तन ऐसी चीज है। तो हमेशा आपके भाव में विभोर रहूंगा, अपने पोषण की कभी भी चिंता नहीं करूंगा। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने आपको अपने पालनकर्ता के रूप में वरण कर लिया है, चुन लिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब भक्तों का, आप सब लोग इतने प्रेम से श्रवण किए, और कोई त्रुटि होगी तो क्षमा कीजिएगा। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की, शील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा राधिका रमन लाल की, समवेत भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदी।